रहे हैं, तो जो वेद में ज्ञान दिया गया है, वेद उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है, उसी ज्ञान को कथाओं के रूप में पुराणों में समझाया जाता है। तो पुराण क्या है? पुराण में जो ज्ञान वेदों में है, उपनिषदों में है, उसको केवल कथाओं के रूप में समझाया गया, कोई अलग बात नहीं है उसमें, क्योंकि इनमें समझना कठिन है। जैसे इसमें केवल मंत्र हो गए तो आप समझ नहीं पाओगे, तो उसको एक कथा के रूप में समझा दिया जाता है। तो महाभारत क्या है? ये एक इतिहास का भाग है। तो वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, संहिताएं, इतिहास इत्यादि, ये सब आपको विभाजन दिया जाएगा। ये जो अगला चार्ट है, ये चार्ट हम आपको दे देंगे, तो इसमें सब विस्तार से समझाया गया है, और इसी को नोट्स बनाकर भी आपको दिया जा रहा है, क्योंकि कलयुग है। और अभी प्रभुपाद ने लिखा कि कलयुग में स्मृति नहीं रहती है, तो अगर अभी आपको समझा दें और कल पूछे तो फिर आप हमसे कहेंगे प्रभु जी ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो फिर से पढ़ाइए, तो फिर इसीलिए हमने कहा लिख कर दे देते हैं सब। तो ये वेदों के कुछ भाग हैं। आगे बढ़िए प्लीज।
व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश अनुसार वेदांत सूत्र की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेद एवं जानम, कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अतएव चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है, और यह बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है।
इसको मैं आपको समझा चुके हैं शुरुआत में, गोविंद भाष्य।
इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत भाष्य है और मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतएव लोगों में यह गलतफहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। इसके अतिरिक्त स्वयं व्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवतम लिखा है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्मादृश्य यथा। इस जन्मादृश्य यथा की पूर्ण विवेचना श्रीमद् भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्मा क्या है। परम सत्य वे है जिसमें प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। यह सारांश है, किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या हुई है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से अद्भुत है, तो उन परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की हुई है। परम सत्य को चेतना स्वरूप होना चाहिए। वेद स्वराट स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट तथा स्वतः तेजवान है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवतम में की है। अतः मैं हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा समझ
जय हो श्री प्रभुपाद की
जय।
तो यहाँ वैदिक ज्ञान का वर्णन किया गया है, चार्ट में आप थोड़ा सा देख सकते हैं। वैदिक ज्ञान प्रमुख का बांटा जाता है श्रुति स्मृति और न्याय में। श्रुति यानी जो सुना जाता है, जिसमें वेद आते हैं, उपवेद आते हैं, संहिताएं आती हैं, ब्राह्मण अरण्य, ये सब क्या है ये हम आपको नोट्स में बनाकर दे रहे हैं। और स्मृति में प्रमुखतः पुराण आते हैं, पंचरात्र, इतिहास। इतिहास यानी जब पुराणों से किसी एक विशेष चरित्र को लेकर उसको विस्तार से समझाया जाता है, जैसे इतिहास में रामायण है, इतिहास महाभारत एक इतिहास है, तो उसको इतिहास कहते हैं। षट दर्शन आते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है, कौन कौन से षट दर्शन है, इसको भी हमने जो आपको नोट्स बना रहे हैं उसमें दिखाया गया है, समझाया गया है। तो इस तरह से पूरे शास्त्रों का यहाँ पर ज्ञान है। हम आपको वो जो नोट्स हैं वो दे के जाएंगे, तो जब तक अगली बार आए उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आए फिर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और न्याय जो होता है वो वेदांत सूत्र है। न्याय यानी लॉजिक के द्वारा किसी चीज को स्थापित करने का प्रयास करना। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद ने लिखा कि वेद व्यास ने 18 पुराण और उपनिषद सारे उन्होंने बना लिए, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। भागवत में इसका चर्चा आती है। नारद मुनि आए तो उन्होंने पूछा, तो नारद मुनि ने कहा कि आपने सारा लिखा है लेकिन आपने भगवान की विशेष कृष्ण की लीलाओं को ठीक से प्रदर्शित नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया, तो इसलिए आप वो लिखिए। तो सारे शास्त्र लिखने के बाद वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, ये जो आप यहाँ सारी चीजें देख रहे हैं, ये सब लिखने के बाद वेदांत सूत्र उन्होंने लिखा, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी। और भागवत लिखने के बाद वो संतुष्ट हुए। तो एक प्रश्न आता है कि भागवत भी तो 18 पुराणों में से एक है ना, भागवत पुराण, और फिर ये लिखा गया कि 18 पुराण वो रचना कर चुके थे, तो फिर भागवत का कैसे उन्होंने अलग से पुराण किया? इसका अर्थ है कि 17 पुराण किए थे और 18वां किया, या क्या है, किसी को पता है?
सभी वैदिक ग्रंथों का सार,
हाँ वो तो है। हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसा लिखा गया कि वेद व्यास ने 18 पुराण इत्यादि सारे पुराणों की रचना कर ली थी, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, उसके बाद उन्होंने भागवतम लिखा, तो क्या पहले उन्होंने 17 ही पुराण लिखे थे फिर भागवत 18वां पुराण आया, या 18 पुराण लिखे थे भागवत 19वां आया, यही क्या संबंध, कैसे समझना
चाहिए? हमेशा से
नहीं, वो तो सही है, भागवत में सब कुछ पहले से रहा है, जो लिखित रूप में जब आया उसका वर्णन हो रहा है। हाँ जी, हमारा प्रश्न इतना है कि उन्होंने कब लिखा श्रीमद् भागवत? जैसे ये कहा गया है कि सारे वेद सारे पुराण उपनिषद लिखने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, तब उन्होंने भागवत लिखा, राइट? इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं क्या प्रश्न कर रहे हैं? हाँ, हमारा प्रश्न ये नहीं है कि भागवत के क्या महत्व, भागवत का महत्व महात्म्य किसी दिन पूरा 4-5 दिन चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा प्रश्न है कि उन्होंने कब लिखा ये? 17 पुराण लिखने के बाद फिर ये 18वां आया, या 18 पुराण लिख दिए थे और कुछ वो कैसे, ये प्रश्न है।
पहले 18 पुराण लिख दिए थे, उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट किया, उसके अंदर
संशोधन किया गया,
इसलिए वो अमल पुराण हो गया।
हाँ जी,
18 पुराण लिख दिए थे फिर वो संतुष्ट नहीं हुए सबसे, तो नारद जी के कहने को उन्होंने श्रीमद् भागवत,
तो वो 19वां पुराण हुआ। प्रश्न तो यही है कि 19वां पुराण हुआ या उसमें संशोधन किया गया?
18 पुराण में भगवान का वर्णन, लीला का वर्णन नहीं।
वो ठीक है, बस ये अभी प्रश्न है कि भागवत उन्होंने लिखा वो सब हमें पता है, लेकिन 19वां पुराण हुआ या 18 पुराण में संशोधन किया गया? जब आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, सारा स्पेकुलेशन, अनुमान लगा रहे हैं। दरअसल उन्होंने 18 पुराण लिख दिए थे, श्रीमद् भागवत भी लिख दिया था उन्होंने, लेकिन वो इस रूप में नहीं था जिस रूप में अभी है। तो जीव गोस्वामी ने समझाया है कि फिर उन्होंने जो रूप था भागवता का उसको बदल कर अब जो प्रस्तुत रूप है उसको किया तब वो संतुष्ट हुए। तो 19वां पुराण नहीं लिखा उन्होंने, 18 ही थे, 18 लिख चुके थे, भागवत भी लिख चुके थे, लेकिन उसमें विस्तार से जैसे अब है उसको नहीं लिखा। जैसे प्रभु जी ने कहा संशोधन किया गया तो उसको उन्होंने कैसे इस रूप में
श्लोक बोले शास्त्रहिता भागवती कृष्ण हाँ
जी
श्लोक भी दिया था
हाँ उसमें समझाया गया है
भागवत स्कंध 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 8 शास्त्रहिता भागवती कृतम ब्रह्मचात्मजम शुकम अध्यापयामस निवृत्ति नृत्य मुने श्री भागवत का संकलन कर देने और उसे संशोधित करने के बाद
तो इस चीज को हमें जानना चाहिए। ठीक है संशोधन हुआ। ओके तो ये भागवत का और भागवत क्या है
भागवतम श्रुति में आता
है भागवतम स्मृति में आता है पुराणों में पुराण में भागवत एक पुराण है तो स्मृति में आता है श्रुति में। अच्छा तो आपके इसमें एक प्रश्न था कि ईशोपनिषद की क्या स्थिति है वैदिक ग्रंथों के वृक्ष पर। ये वैदिक ग्रंथों का वृक्ष है तो अब आप बताइए ईशोपनिषद कहाँ पर आता है उपनिषद उपनिषद कहाँ आएंगे हाँ तो ये उपनिषद है ना ईश उपनिषद तो वो स्मृति में आएगा श्रुति में तो ये श्रुति में आता है ये यजुर्वेद का भाग है यजुर्वेद का भाग है उपनिषद जो होते हैं वेदों के भाग आते हैं यजुर्वेद का यजुर्वेद में दो विभाग हैं एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद जैसे हम लोग दो होते हैं ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ऐसे उसमें दो विभाग हैं शुक्ल और कृष्ण तो ये शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। ठीक है ध्यान रहेगा तो अभी हम लोग ये इंट्रोडक्शन ये जो भूमिका है इसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। जैसे हम वेद के विषय में बता रहे थे ये कुछ चीजें जो प्रभुपाद ने दी हैं कि वेद परम है प्राचीन है स्वयं सिद्ध सत्य है दिव्य है अपौरुष है और श्रवण द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है अर्थात श्रुति और बिना अपनी किसी व्याख्या के इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये वेदों के कुछ लक्षण हैं और आपने अपने बुक्स में नोट किए होंगे। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि सभी लोग जैसे शंकराचार्य इत्यादि इन्होंने भाष्य दिया लेकिन शंकराचार्य जी का ये भाष्य नहीं है अन्य आचार्यों ने भी इस भाष्य को दिया है। ठीक है हाँ जी वैसे हम सोच रहे हैं कि जब हम पढ़ाते जाए प्रश्न जो आए तो आपको ये भी बीच बीच में बता दें कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा है ना अच्छा रहेगा ना ठीक है तो जो भी प्रश्न होगा हम अगर उसको बताना होगा तुम सीधे तो नहीं बताएंगे अच्छी बात नहीं है तो हम कहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण अगर हम कोई प्रश्न को कहेंगे बहुत महत्वपूर्ण है मतलब वो एग्जाम में आने वाला है ऐसे 80 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन सूचित कीजिए लिस्ट तो जब सूचित किया गया मतलब आपको जैसे 3 प्रमाणों की सूचीबद्ध कीजिए लिस्ट 3 प्रमाण तो आपको केवल लिस्ट करना है कौन कौन से हैं प्रत्यक्ष अनुमान शब्द बस आपको समझाना नहीं तो लेकिन अगर कहा गया कि हाँ इसकी परिभाषा दीजिए तब आपको उसको समझाना है तो उसके अनुसार मार्क्स होंगे तो आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर देना अगर कहा गया कि लिस्ट त्रिप्रमाण से सूचीबद्ध कीजिए, आप उनको समझाते जाएंगे तो मार्क्स उतने ही मिलने वाले, कोई फायदा नहीं। तो आपको देखना है प्रश्न कैसा है, उसके अनुसार उत्तर देंगे।
जैसे इसमें लिखा है अपौरुषेय शब्द को स्पष्ट कीजिए,
स्पष्ट कीजिए,
सिर्फ दो लाइन।
हाँ, तो उस समय आप देख सकते कितने मार्क्स का है, समझिए। अगर वो यहाँ नहीं होगा एग्जाम में, यहाँ तो उस समय आपको देखना है कि अगर एग्जाम में दिया गया है कि अपौरुषेय शब्द को स्पष्ट कीजिए और उसके 5 मार्क्स दिए गए, थोड़ा अच्छे से समझाना। 1 मार्क दिया गया तो आप खाली लिख दीजिए कि अपौरुषेय का होता है किसी पुरुष, साधारण पुरुष जिसमें 4 दोष हैं उसके द्वारा इसकी संकलन नहीं किया गया, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा गया। और कोई प्रश्न? शांत रहिए, हम लोग आपस में बात कर लीजिए।
द्विज बंधु में यहाँ
आप लोगों को स्कूल में बैठने की आदत चली गई है ना, इसलिए बार बार कहना पड़ता है ना। स्कूल में जब टीचर बार बार नहीं कहती थी ना, तो बात मत कर, फिंगर ऑन योर लिप्स।
द्विज बंधु का अर्थ दिया गया है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है पर उसका ब्राह्मण के गुण ना हो। और जैसे भागवतम पढ़ते हैं उसमें देखते हैं द्विज का अर्थ ये बताया गया कि जिसका दूसरा, एक तो पहला जन्म हुआ और फिर
तो दोनों का विरोध क्या है? वो द्विज है, ये द्विज बंधु है।
अच्छा,
वो द्विज है तो उस द्विज का बंधु, उसको द्विज नहीं कहा जाता इसको, क्योंकि उसके अंदर वो सब गुण नहीं है। द्विज अर्थ होता है ज यानी जन्म, जिसका दूसरा जन्म हो गया। पहला जन्म माता पिता से होता है, दूसरा गुरु से होता है, और फिर जब वो शास्त्र पढ़ लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो द्विज बंधु मतलब जिसका जन्म कुल में हुआ है, यानी उसको मानना चाहिए ब्राह्मण, लेकिन दरअसल उसके कार्य नहीं है, इसलिए इसको द्विज बंधु कहते हैं, उसको द्विज नहीं कहते। वैसे द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म हो गया, जिसने संस्कार के द्वारा गुरु को स्वीकार कर लिया। संस्कार भजे भवे द्विज, द्विज होता है संस्कार से, और शास्त्र पढ़ने से फिर वो ब्राह्मण बनता है। थोड़ा शांत, थोड़ा सा शांत रहिए। हाँ जी, हाँ जी, स्पष्ट नहीं है तो आरोह और समझे। हाँ, आगमनिक निम्नलिखित में जो नीचे आ रहे हैं, निम्न वो अवरोह है, अवरोह यानी नीचे आना और ऊपर जाना आरोह कहलाता है। सारों को वैदिक शास्त्र, ये सारे शास्त्र प्रमाण हैं, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो पुराण में कहा वो सही नहीं है, श्रुति में कहा उसको पुराण मान लिया, ऐसा नहीं है। तो पुराण या उपनिषद, वेद इत्यादि, ये सब प्रमाण है, इन सबको प्रमाण माना जाता है। तो जो भी, लेकिन अलग अलग समय के अनुसार जो आचार्य देते हैं, इसलिए आचार्यों का मेहनत है कि वो प्रमाण, जैसे श्रीमद् भागवत को अमल पुराण उसको प्रमाण माना गया है, क्योंकि व्यासदेव ने सब कुछ करने के बाद अंत में उसको वेदांत को प्रमाण माना गया। तो सारे ही प्रमाण है, क्योंकि शास्त्रों में कोई गलत नहीं दिया गया, लेकिन शास्त्रों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें दी गई। जैसे शास्त्रों में कर्मकांड को दिया गया है, कर्मकांड होता है, या फिर उपासना कांड दिया गया, ज्ञान कांड दिया गया, तो ये सब प्रमाण है, ये सब कोई झूठ नहीं है, सत्य है। लेकिन जिस अवस्था में आप हैं उसके लिए हो सकता है, जैसे आपके लिए भक्ति कर रहे हो तो कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, तो उसको जरूरत नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन प्रमाण तो सारे वेदों को प्रमाण ही माना गया, जैसे प्रभुपाद ने शुरुआत में कहा वेद स्वयं सिद्ध सत्य हैं, वेदों को प्रमाण माना गया। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, इसीलिए इतिहास, इसीलिए वो इतिहास में है। इतिहास मतलब जो हुआ, इतिहास किसको कहते हैं कि जो हो चुका है उस वजह से। हम लोग स्कूल में इतिहास पढ़ते हैं, भारत का आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता, उसको इतिहास कहते हैं। तो इसलिए महाभारत हुआ है, सही में, इसीलिए उसको इतिहास में रखा गया। सब सब पुराणों में जो भी है, पुराणों में पांच चीजें दी जाती हैं। नरसिंह पुराण में है एक श्लोक आता है जिसमें वर्णन किया गया है, सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मनवंतराणी च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। पुराणों के पांच लक्षण होते हैं। क्या पांच लक्षण है? सर्ग, सर्ग अर्थात पहले स्तर की सृष्टि, दूसरा विसर्ग, दूसरे स्तर की सृष्टि, तीसरा अच्छा स्लो 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 बोले मतलब आवाज कम करें या स्पीड कम?
स्पीड कम, स्पीड कम।
सबसे पहला है सर्ग। सर्ग मतलब प्रथम स्तर की सृष्टि जो महाविष्णु के स्तर पर होती है। इसको कभी और समझाएंगे इसमें विस्तार से नहीं, ये विषय ही अलग है, ये आपको आएगा इसका विषय तो पढ़ाएंगे। पहला है सर्ग, दूसरा है विसर्ग। विसर्ग यानी दूसरे स्तर की सृष्टि जो ब्रह्मा जी करते हैं। जैसे आप ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहते हो ना, तो ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है लेकिन द्वितीय स्तर के, प्रथम स्तर के नहीं है। प्रथम स्तर के सृष्टिकर्ता है महाविष्णु। जैसे आप लोगों को सरल उदाहरण दे आप समझ जाएंगे, आटे को गूंदा जाता है ना, तो आटे को गूंदते हैं फिर उसके गोले बनाकर उसकी चपाती बनाई जाती है, तो आटे को गूंदने का काम महाविष्णु करते हैं। ये प्रथम स्तर की सृष्टि है। आटा ही नहीं गूंदेंगे तो आपकी चपाती कैसे बनेगी, है ना? तो वो महाविष्णु करते हैं, और उसके गोले बनाना और उसको चपाती बनाना ये ब्रह्मा जी करते हैं। समझ आ गया? हाँ, सर्ग है, दूसरा विसर्ग। पुराणों के जो पांच लक्षण है, सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंश, फिर वंशों का वर्णन होता है। दो प्रमुख वंश है, चंद्रवंश और सूर्यवंश। आप लोग कौन से वंश के हैं? सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? सब सब सूर्यवंशी हैं, मतलब सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं। अब चंद्रवंशी हो गए, चंद्र के सूर्य उगने से पहले उठ जाते हैं। ओके, तो वंश, फिर मनवंतर का वर्णन होता है, मनवंतराणी चा। मनवंतराणी चा मतलब मनवंतर आप समझते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं, एक मनु के समय को एक मनवंतर कहा जाता है, करीब 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग में कितने साल होते हैं? 43,20,000 साल एक चतुर्युग में। ऐसे 71 चतुर्युग एक मनवंतर कहलाता है, ऐसे 14 मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी जीवन छोटा है थोड़ा। ओके, और पांचवा चीज कितने लिखे आपने?
चार।
क्या क्या है? बहुत अच्छा, तो ये है। और पांचवा होता है वंशानुचरितम चैवा, उन वंशों में से एक चरित्र को लेकर विस्तार से उसको समझाते हैं। जैसे रामचंद्र जी का समझा सकते, किसी और का समझा सकते, पुराणों में वंश वंश में से किसी एक चरित्र को लेकर फिर समझाया जाता है, उनके जीवन को विस्तार से कहते हैं वंशानुचरितम चैवा। पुराणम पंच लक्षणम, तो पुराणों में पांच ही लक्षण होते हैं, ठीक है। एक श्लोक को आप याद कर लीजिए, बड़ा सरल है, हमारे पीछे पीछे दो आप याद कर लीजिए, सर्गस्य प्रति सर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंच लक्षणम्। बस सरल है। ये नरसिंह पुराण से। और भागवत को महापुराण कहा गया है क्योंकि भागवत में 10 विषय है। आपने पांच पढ़े, अन्य पुराणों में पांच है, भागवत में 10 विषय है। कौन से विषय है भागवत के? ये 10 विषय है, उसके हैं अत्र सर्व विसर्गश्च स्थानं पोषणमुक्तया ईशनुकथा मनमंत्रः निरोध मुक्ति आश्रयः। ये 10 विषय, ठीक है। ये एक श्लोक है भागवतम के दूसरे स्कंद का अंतिम अध्याय में, 10वें अध्याय का, उसमें ये 10 विषय दिए गए, ठीक है। ये भागवतम के 10 विषय। यस, हाँ, आपको ये 2 क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। एक ये है जिसमें करीब 78 प्रश्न हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन बैंक है, मतलब इसमें से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको अपनी तैयारी के लिए है, इसके उत्तर लिखकर देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी तैयारी के लिए आप उसी में लिख लीजिए, ताकि एग्जाम के पहले बस एक बार इसको पढ़ेंगे तो एग्जाम तैयार। जो दूसरा पेपर दिया गया सिंगल शीट, वो होमवर्क है। अभी आप स्कूल में आए हैं तो होमवर्क भी तो करना पड़ेगा, वो तो भूल ही गए थे। वो होमवर्क है, उसको आपको अच्छी तरह लिखकर सबमिट करना है, वो आपके असाइनमेंट्स का भाग है। उसमें कोई ये असाइनमेंट नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ओपन बुक ऐसे नहीं है, प्लीज इसका कोई मार्क्स नहीं है, ये होमवर्क है। आप स्कूल में जाते हैं होमवर्क पे, तो होमवर्क का कोई मार्क्स देते हैं? एग्जाम का मार्क्स दिया जाता है आपको, जो ओपन बुक एग्जाम होगा उसके प्रश्न बाद में दिए जाते हैं, उसमें वर्ड लिमिट आएगी, ये आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो ये होमवर्क आपको हम जब आ रहे हैं 16 तारीख से, तब तक सबमिट करना। सबमिट करने का हिंदी में होता है कि आपको लिखकर हमें देना है। इन सबको नहीं, अगेन हम क्लियर कर रहे हैं, ये 78 प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके आपके लिए है। उसमें कितने प्रश्न हैं? सिंगल शीट 9 प्रश्न, पीछे नहीं देखा। उसमें भी सर, तो जो भी 12-15 जो भी प्रश्न है केवल उतने ही लिख कर देने हैं, और थोड़ा स्पष्ट हैंडराइटिंग हो ताकि हम पढ़ सके उसको। नहीं, इसको ये जो प्रश्न है जो लिख के देने, वो शीट में देके आपको सबमिट करने हैं। A5 भी ले लीजिए चलेगा, A3 में कर लीजिए, हम उसको इतना बड़ा कहते पढ़ लेते हैं। पेपर साइज प्रैक्टिकली जो भी होते हैं उसमें सबमिट कर लीजिए, ठीक है।
जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करा दें, आज लास्ट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये जिनको कोर्स करना है रजिस्ट्रेशन करा दें तो वो करा दें, फॉर्म लेने में। ये 12 क्वेश्चन पढ़ा दिए या पढ़ाने बाकी है कुछ?
कौन से?
ये 12 क्वेश्चन जो है
अभी पढ़े नहीं है, आप अपने आप ईश्वर परिषद में से ढूंढ सकते हैं उसको, इसके सारे उत्तर ईश्वर परिषद में, और उसके मंत्र दिए गए कहाँ पर है, कौन से मंत्र में आपको ढूंढना है।
फिर टाइमिंग ठीक है आपको माता जी को सुबह का?
थैंक यू। तो ये समय ठीक है आप लोगों के लिए, इसी समय पर जारी रखते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये कोर्स ऐसे ही चलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो हम कल जा रहे हैं।